الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستبقوا الخيرات. صدق الله العلي. کے دوسرے الگ الگ فصل میں 27 فائدے بیان فرمائے ہیں. شوق پیدا ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، نیک بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے اور باعمل بنے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، تاکہ یہ فائدے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں، اور اس کے علاوہ بھی جو فوائد ہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہوں. فصل نمبر 18 میں حضرت نے فرمایا ہے کہ بعض نیک کاموں میں اور اللہ تعالیٰ کی تابعہ داری میں، بعض نیک کاموں میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں یہ اثر ہے کہ اس سے آدمی کے مال و دولت میں اثر ہوتا ہے اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے. چنانچہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بیچنے والے اور خریدنے والے، یعنی کاروبار کرنے والے، اگر بیچنے والا اور خریدنے والا اپنے مال کے عیب کو صاف صاف بتا دیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت ڈال دیتے ہیں. اور یہ برکت خریدنے والے کو بھی ہوتی ہے، بیچنے والے کو بھی ہوتی. بیچنے والے کے تو پیسے ملتے ہیں، تو اس کے پیسے میں برکت ہوتی، اور خریدنے والے کو مال مل جاتا ہے. جو بھی اس نے چیز خریدی ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں. اور اگر بیچنے والا اپنے مال کے عیب کو چھپائے، اپنے مال میں جو عیب ہے اور جو خرابی ہے یا کمی ہے یا خامی ہے وہ اس کو چھپا لے، تاکہ خریدار خرید لے اور وہ یہ سوچے کہ اگر میں عیب بتاؤں گا تو نہیں خریدے گا، لہذا وہ عیب کو چھپاتا ہے، خرابی اور کمی کو छुपा लेता है। या इसी तरह जो खरीदने वाला है वो आमतौर पर पैसे देता है, पैसे खरे भी होते हैं, पैसे खोटे भी होते हैं, पैसे कम भी दिए जा सकते हैं, बराबर तो देते ही देते हैं, ज्यादा देने वाला तो कौन होता है। ये तो शान है सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप हमेशा झुकता हुआ तोलने की तालीम देते थे और खुद भी इस पर अमल फरमाया करते थे कि माल ज्यादा दिए पैसे कम लिए। अल्लाह तो अपने जिस चीज से कोई चीज खरीदी जा रही है उसके अंदर अगर कोई खराबी या आयब है तो खरीदार भी उसको साफ साफ बता दे, अगर न बताए और वो भी अपनी खोटी पूंजी को खरी बता करके बेचे या जो उसके बदले में दे रहा है वो पूरा नहीं दे रहा, बढ़िया बता रहा है, बहुत ही आला बता रहा है, बहुत ही उम्दा बता रहा है, जैसे गंदम के बदले गंदम खरीदना, जौ के बदले जौ खरीदना, लकड़ी के बदले लोहा खरीदना, लोहे के एवज लकड़ी खरीदना वगैरह, तो वो भी अपने ऐप को छुपा ले। तो बल्कि झूठ बोले, बल्कि झूठ बोले, मसलन दुकानदार तो आमतौर पर झूठ बोलते ही हैं कि भाई ये एक नंबर है दो नंबर, कहता है ये असली है ये वो नकली, या कहता है कि बहुत ही उम्दा और बिल्कुल सही चीज है और है खराब। ऐसे खरीदार जो उसके बदले में पैसे वगैरह या कुछ और चीज दे रहा है बेचने वाले को, वो भी कहता है जो कुछ मैं दे रहा हूँ बिल्कुल सही है और ये है और वो है और ऐसी बहुत उम्दा चीज दे रहा हूँ, लेकिन हकीकत में वो ऐबदार है, वो पूरी नहीं है, कम कम है। तो और बरकत नहीं हो रही, कारोबार कर रहे हैं लेकिन और बरकत क्यों नहीं हो रही, बस दोनों में से कोई ना कोई धोखा दे रहा है या झूठ बोल रहा है। ये है कि बेचने वाला भी सच सच बोले, अब बता दे भाई इसके अंदर ये खराबी है, वरना आम तौर पर घुमा फिरा करके ऐसी बात कहने की कोशिश करते हैं कि खरीदार को उसकी बुराई और ऐब और खामी का पता न चले और वो उसको बिल्कुल सही समझ करके खरीद ले। तो ये तो सब झूठ का बाजार है, ये तो झूठी झूठी है, जब झूठ होगा तो बरकत नहीं होगी, ऐब को छुपाएंगे तो बरकत नहीं हो सकती। ऐसे खरीदने वाला भी बाद मतलब जो कुछ अपने तरफ से किसी चीज के खरीदने में अदायगी कर रहा है उसमें जो कुछ दे रहा है उसके अंदर भी ऐब होता है, खराबी होती है, उसको छुपा देता है। तो अगर के जनाब आप चीज बेचे इस सूरत में भी बिक सकती, दुनिया में ऐब से ऐबदार चीज भी बिकती है, आला से आला चीज भी बिकती है, दरमियान दर्जे की चीजें बिकती हैं। सबसे ज्यादा तो कबाड़े वालों को देख लो भाई, कबाड़ियों में जो चीजें किसी काम की नहीं होती, जो बिल्कुल नाकारा हो जाती हैं, जो बिल्कुल कंडम हो जाती हैं, खराब हो जाते हैं, वो कबाड़िया खरीदता है नहीं खरीदता। तो यहाँ सब चीजों के खरीदार दुनिया में मौजूद है, अच्छी चीज के भी खरीदार है, खराब चीज के भी खरीदार है, हर चीज बिकती है। बस ये है कि अगर आदमी सच बोले और अपनी चीज के अंदर जो खराबी है वो साफ साफ बतला दे, इसके बाद फिर खरीदने वाला चाहे खरीदे और चाहे ना खरीदे और चाहे कम कीमत पर खरीदे और चाहे जो बेचने वाले ने दाम बताए उस पर बेचे, उसकी मर्जी है, लेकिन बेचने वाला अपनी चीज की खूबी भी सही सही बता दे और सच सच बता दे और जो उसमें खराबी है वो भी सच सच बता दे, तो उस सौदे में बरकत होगी। ये हुक्म खरीदार का भी है, दोनों में से कोई भी झूठ न बोले, दोनों में से कोई भी झूठ न बोले, तो अल्लाह ताला ऐसे माल में बरकत अता फरमाते, ऐसे सौदे में बरकत अता फरमाते, ایسے کاروبار میں اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرماتے ہیں. دن دوگنی رات چوگنی ہوتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں. ایسی برکت ہوتی ہے. یہی حکم ملازمت کا بھی ہے. ملازمت کا بھی یہی حکم ہے کہ ملازمت میں اگر آدمی ڈیوٹی صحیح صحیح دے, جو اس کا ڈیوٹی کا وقت ہے پورا دے, اور پھر اس ڈیوٹی میں اس کے ذمے جو کام ہے وہ بھی ٹھیک ٹھیک انجام دے, اس کے اندر اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کرے. جیسے بعض لوگ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے یہ ذاتی کاموں میں ٹائم پاس کر دیتے ہیں, آدھا پونا دیں گے باقی سب غائب, تو یہ اس میں بھی برکت نہیں ہوتی. ایسی ملازمت میں برکت نہیں ہوتی. اور جہاں وقت بھی پورا دیا جاتا ہے اور اس وقت میں جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے حتی الامکان اس کو بھی پورا کرتا ہے, تو پھر اس میں اس کی برکت ہوتی. تو اس کی پھر ملازمت میں جو تنخواہ ملتی ہے اس میں برکت ہوتی. اور برکت یہ ہوتی ہے جس کو ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں, جو ہمارے ذات رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس 100 روپے ہیں, اس نے اس میں سے 10 روپے مثلا اللہ کے راستے میں خیرات کر دیے, تو آگے یہ فائدہ بھی آ رہا ہے اگلی فصل میں کہ اس سے بھی برکت ہوتی, اس سے بھی برکت ہوتی. تو ہمارے فرماتے تھے برکت کا یہ مطلب نہیں کہ 100 کے 110 ہو گئے, ظاہراً تو 90 ہیں, وہ ظاہراً تو 10 روپے خیرات کر دیے 100 میں سے تو 90 بچے. اب ایک آدمی کے پاس 90 روپے ہیں, ایک آدمی کے پاس 100 روپے ہیں, دونوں ایک کام کرتے ہیں ایک جیسا, کسی سے کرواتے ہیں کام, اس کے 100 روپے میں وہ کام ہو رہا ہے, دوسرے کا وہی کام 90 روپے میں ہو جائے گا, یعنی کم پیسوں میں ہو جائے گا. یہ تو ایک مثال ہے. اور بھی اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا ہے تو اس کے مال میں ایسی برکت ہوگی کہ کم پیسے میں زیادہ کام نکلے گا, اور جس کے مال میں برکت نہیں ہوگی وہ اس سے زیادہ پیسے خرچ کر کے بھی وہ بات حاصل نہیں کر سکے گا. ایسی کاروبار کے اندر بھی کہ کاروبار کے اندر 1 لاکھ روپیہ لگایا, اب جناب رات دن محنت بھی کی, بھاگ دوڑ بھی کی, سب کچھ کیا, لیکن بچت کچھ نہیں. کوئی بیماری آ گئی تو بس 1 لاکھ کے بجائے 2 لاکھ کے برابر اس کے اندر برکت ہو جائے گی, وہ اس کے کام بھی 1 ہی لاکھ میں 2 لاکھ والے ہو جائیں گے, یا سچ مچ مال میں ترقی ہو کر کے بڑھ کر کے 1 کے 2 ہو جائیں گے, 2 کے 10 ہو جائیں گے. معلوم ہوا کہ بعض نیکیاں ایسی ہیں اور بعض نیک کام ایسے ہیں کہ اگر آدمی ان کو کرے تو اس سے آدمی کے مال میں برکت ہوتی ہے, جس میں سے خاص طور سے کاروبار کے اندر. تو کاروبار میں آج کل جو خیر و برکت نظر نہیں آتی اس کے بہت سارے اسباب ہیں, ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ عام طور پر جو مال بیچنے والے ہوتے ہیں اور تاجر ہوتے ہیں, سوداگر ہوتے ہیں, وہ جھوٹ بولتے ہیں. ایک تو جھوٹ بولتے ہیں, دوسرے یہ کہ اپنے مال کے اندر جو عیب ہے وہ چھپاتے ہیں. کسی بھی لائن میں جا کے دیکھ لو, دکاندار کبھی یہ نہیں کہے گا بھائی یہ چیز گلی ہوئی ہے, بھائی آدھی ٹھیک ہے آدھی گلی ہوئی ہے, اگر تمہارا دل چاہے تو لے لو ورنہ نہیں, کبھی نہیں کہے گا. بلکہ گلی ہوئی چیز نیچے اور اچھی چیز اوپر, 99% دکانوں کے اوپر آپ کو پھل والوں کے یہاں چلے جاؤ اوپر کچھ نیچے کچھ, سبزی والوں کے یہاں چلے جاؤ اوپر کچھ نیچے کچھ, غلے والوں کے یہاں چلے. بازار میں تشریف لے گئے تو گندم کی بوریاں رکھی ہوئی تھی, تو ایک گندم کی بوری جس کے اوپر آدمی گندم ڈھیر لگا کر کے رکھتا ہے, گیلی گندم سامنے آ گئی. آپ نے کہا ارے بھائی یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سوکھی میں اور گیلی میں زمین آسمان کا فرق ہے, گیلی کا وزن زیادہ ہوتا ہے सुखी का वजन कम होता है, तोल में फर्क पड़ता है। उसने कहा हुजूर ये बारिश हुई थी तो ऊपर से सूख गई, नीचे की गीली हो गई। गीली वाली ऊपर क्यों नहीं की? गीली वाली ऊपर कर दे, सूखी भी नीचे कर दे, ताकि किसी खरीदने वाले को ये धोखा ना होता कि ये सूखी हुई है। वो देख रहे थे भाई तो गीली है, तो गीली समझ करके फिर खरीदता तो उसको धोखा ना होता। तो इसमें धोखा है और ऐब, तुमने सूखी भी ऊपर रखकर और गीली नीचे छोड़कर तुमने उसका ऐब भी छुपा लिया, क्योंकि गीली वाला होना ऐब है और सूखा हुआ होना खूबी की बात है। आप जी फरमाए। तो आम तौर पर कहीं भी आप चले जाओ, आपको ये बात वाज तौर पर नजर आएगी। आप अमरूदों की पेटी ले लो, साफ सुथरी उम्दा और नीचे सड़ी हुई गली भी पतली पतली होंगी। ये एक आम सूरत हाल है। ये अब ये है, इसी से खैर बरकत नहीं होती। ऐसे बेचने में झूठ इतना बोलते हैं कि बस समझो कि जो दुकानदार झूठ बोलने का माहिर हो वो समझा था सबसे बड़ा होशियार और सबसे बड़ा अक्लमंद, और जो बेचारा सच सच बोले उसको तो आजकल बेवकूफ समझा जाता। तो ये हालत हो गई है, अल्लाह बचाए। तो बरकत कहाँ से आएगी, खैर कहाँ से आएगी, आफियत कहाँ से आएगी? नहीं आ सकती। खैर और बरकत का एक वाक्य सुनाता हूँ आपको।
www.dasquran.com
हमारे दरस निजामी में एक किताब पढ़ाई जाती है नूरुल अनवार, उसके मुसन्निफ हज़रत मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े आलिम और बड़े बुजुर्ग और सूफी थे। ये औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ये उस्ताद थे। और इनके अजीब अजीब वाकयात हैं। आज उन्हीं के दो वाक्य सुनाऊंगा आपको, एक झूठ में आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए उनके यहाँ तशरीफ ले गए, क्योंकि ये उसे थे तो वो बहुत इकराम करते थे, लिहाजा इकराम किया और एहतराम किया, अदब किया। और जब हजरत तशरीफ ले जाने लगे तो नहीं आदमी हजरत की खिदमत में पेश किया, हजरत ने खुशी से कबूल कर लिए और वापस घर तशरीफ ले गए और अपने अहलिये से जाकर कहा कि भाई ये पैसे जरा संभाल के रखना, ये पैसे जरा संभाल के रखना और किसी ऐसे कारोबार में लगाना जिसमें उनके अहलिया ने उनको संभाल लिया। और संभाल करके दो आने के दो दर्जन अंडे मंगवा लिए मुर्गी के, और पड़ोसन की एक मुर्गी कुड़क थी उसके नीचे रख दी। माशाल्लाह किसान के सब में से बच्चे अच्छे खासे वो हो गए, तो उनके अंडे भी बेचे और उनके जनाब अंडे मुर्गी के नीचे भी रखे। इस तरीके से अच्छा खासा मुर्गियों का क्या कहते हैं फार्म बन गया। फिर वो बेच करके उनके अंदर भी इतनी बरकत के कुछ दिन के बाद गाय, गाय के बाद फिर भैंस, फिर भैंस के बाद जनाब प्लाट और प्लाट के बाद मकान। तो अब दिन दोगुनी रात चौगुनी हो गई। देखते देखते हजरत मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह तो साहिब जायदाद बन गए और बड़ी खैर और बरकत हो गई। तो जो शहजादे थे आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के, उनको ये शुबा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह चूंकि आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, हो सकता है कि किसी काम निकालने के लिए खुदा न खास्ता पैसे लेते हों, जिसको रिश्वत कहते हैं। एकदम के साहिब जायदाद कैसे हो गए, इतना वसी कारोबार हो गया, देखते देखते मालदार हो गए, कैसे हो गए? उन्होंने आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि भाई इनको देखो तुम्हारे उस्ताद हैं, इनकी खबर लो, ये एकदम रईस कैसे हो गए? ये तो फकीरी लाइन के हजरत हैं, ये तो ये अमीरी लाइन में कहां से आ गए? तो उन्हें भी शुबा हुआ। तो उन्होंने एक दिन हजरत से मुलाकात की और मुलाकात करके कहा हजरत लोग चेमगोइयां कर रहे हैं आपके बारे में, आपका पिछला जमाना भी सब लोगों को मालूम है, मुझे भी मालूम है, लेकिन ये हजरत हाल में जो आप मालदार हो गए हैं और एक से एक आला चीजें आपके पास आ गई हैं, देखते देखते आप साहिब जायदाद बन गए हैं, क्या वजह है कैसे? तो हजरत ने कहा कि भाई ये तुम्हारे दुआने की बरकत है, ये तुम्हारे दुआने की बरकत है, ये बता तुमने ये कहां से हासिल किए थे, तुमने ये दुआने कहां से हासिल किए थे? तो उसने, हजरत बताने की बात तो नहीं है लेकिन आप पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूं। वो ये कि एक दिन रात का वक्त था, एक दिन रात का वक्त था तो बारिश हो रही थी, सब लोग अपने अपने घरों में थे। मेरा जो मुंशी है ये अपने घर के बाहर निकला इधर उधर देखने के लिए कि कोई मजदूर मिले तो मैं अपने छत की मरम्मत करवाऊं कि बारिश का पानी उसके अंदर घर में टपक रहा था। और उसकी बीवी ने उससे कहा कि मैं तुमसे पहले ही कह रही थी कि बरसात आने वाली है, बरसात आने वाली है, छत कमजोर है, तुम खुदा के लिए छत की मरम्मत करवा लो वरना बारिश होगी और पानी अंदर आएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे। अब देख लो बारिश हो गई और छत टपक रही है, मैं इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं। तो वो परेशान होकर के घर से बाहर निकला और उन्हें इधर उधर देखा कोई मजदूर तो मैं एक तरफ खड़ा हुआ था अपनी रियाया की खिदमत की नियत से। तो जैसे ही उसने मुझे देखा मैंने कहा हाँ भाई क्या बात है, अभी मुझे काम है तुम मजदूरी करोगे? हाँ बताओ क्या क्या मजदूरी? कहा मेरे छत की जो छत है वो टपक रही है, तुम इसकी जरा से मिट्टी डाल के मरम्मत कर दो ताकि पानी आना बंद हो जाए। तो फटाफट मैंने अपने कमर को कसा और कपड़े से बांधा और मैं एकदम फावड़ा और तगारी मैंने कहा कि ला दो मैं कर देता हूँ ये काम। तो मैंने फटाफट ये सारा काम कर दिया उसका। कौन कर रहा है? बादशाह, आम लिबास के अंदर है, किसी को पता भी नहीं चल रहा, मुंशी को भी नहीं पता कि हमारे मुल्क का बादशाह है और मैं इनका मुंशी हूं। और रात और रात सारी मिट्टी डाल डाल के सारे वो कोने और वो राहें जहां से पानी टपक रहा था बंद कर दी और छत को मजबूत कर दिया। और फिर उतर गया है कि गाजी मेरी मजदूरी दे दो। भाई मजदूरी देने को तो अभी कुछ है नहीं, कल आ जाना लेने के लिए। हम कल की बात मत करो भाई, काम मैंने नकद किया, पैसे भी नकद चाहिए, कल पत्नी में आऊं नहीं आऊं मुझे तुम्हारे पैसे दो। वो अंदर गया और जैसे कैसे इधर उधर से कर कर आके उसने दुआने ला करके मुझे दिए। तो हजरत ये आपके गुलाम के दुआने इस तरीके से कमाए थे अल्लाह। तो दुआने आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मातहत उन मुंशी के घर की छत दुरुस्त करने के एवज में हासिल किए थे। हजरत वही फिर मेरे पास थे जब आप तशरीफ लाए तो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। तो फरमा भाई तेरे दुआने की तो बरकत है देख ले। मैंने जब तुमने सिर्फ दुआने दिए थे तो मैं समझ गया था कि ये आलमगीर ने किसी हलाल जरिए से हासिल किए होंगे, इसमें बरकत होगी। तो इसलिए मैंने अपनी अहलिया से कहा था जरा संभाल के रखना और जरा इसको ऐसे काम में लगाना कि जिसमें तरक्की हो और कारोबार बेहतर से बेहतर हो, रोजी मिले। तो भाई तुम्हारे दुआने का ये बरकत, ये सारा कुछ इसी की बरकत है। दुआने दुआने में 2 लाख हो गए उनके, और उनके जमाने के 2 लाख आज 2 करोड़ के बराबर है। तो जब आदमी मजदूरी भी सही सही करता है और सही सही पैसे लेता है तो भाई उसमें भी बरकत होती है, ऐसी कारोबार में बरकत होती है। ऐसी मौला जीवन रहमतुल्लाह अलैह का एक और सुनाऊं किस्सा, वो झूठ से मुतालिक है जो आज के हमारे हालात पर भी सादिक आ सकता है। आप जानते हैं कि हर जमाने में दरबार बादशाहों के दरबार में कुछ खुशामदी उलमा भी होते हैं जिसे कहते हैं खाने पीने वाले, और कुछ अल्लाह वाले और मुखलिस होते हैं, वो जाते ही नहीं उनके पास और वो उनके दरवाजे पर ही पड़े रहते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा काम करें जिससे कि बादशाह खुश हो जाए और वो इनाम दे दे तो उस पर गुजारा करते हैं। तो कुछ ऐसे खुशामदी किस्म के और उलमा सू जिनको कहते हैं ऐसे कुछ उलमा थे उनके यहाँ। तो जब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जब बादशाह हुए तो उन्होंने ऐसे सारे दरवाजे बंद कर दिए, सब दरवाजे क्योंकि वो मुल्क की दौलत जो है, मुल्क की अमानत, वो तो अमानत है, अमानत तो जो काम करेगा उसे मिलेगी, जो नहीं करेगा तो कैसे मिलेगी। दरवाजे बंद किए, खाना पीना बंद हो गया। अब ये बड़े परेशान हुए, यार हमारे तो दाल रोटी बंद हो गई, अब कहाँ से खाएं, कहाँ से खाएं। काम धंधा तो चाहता नहीं था, वो खुशामदे करते थे, तारीफे करते थे, इस पर इनाम मिलता था, पैसे मिलते थे, खाना पीना खूब चलता था। तो उन्होंने एक तरकीब सोची, वो तरकीब ये सोची कि वो भाई हजरत के उस्ताद जो है ना मुल्ला जीवन रहमत, वो बड़े सीधे साधे हैं, अल्लाह वाले भी हैं और बड़े भोले भाले हैं, और उनके पास चलो, वहां से दरवाजा खुलेगा। उनके पास गए और जाकर के, हजरत ऐसा है कि फला जगह फला गांव में हजरत एक नहर है, और नहर भी दरिया से कम नहीं है, बहुत बड़ा एक समझो दरिया ही समझो। हजरत वहां पर लोगों को इस पार से उस पार जाने की बहुत ही तकलीफ है, और गर्मियों में इतना उसमें पानी आता है कि किश्तियां ही बंद हो जाती हैं, अब इधर के आदमी उधर, उधर के आदमी इधर जा ही नहीं सकते। हजरत वहां बड़ी तकलीफ है, लोगों को बड़ी परेशानी है। हमने ये इरादा किया है कि हजरत अगर हमें शाही खजाने से कुछ पैसे मिल जाए तो हम वहां पुल बनवा दें। पुल बन जाएगा तो हजरत सबको आसानी हो जाएगी, इंसान तो इंसान, जानवरों का भी गुजरना वहां से आसान हो जाएगा। खूब इस बात को उन्होंने हजरत पे जोर डाल के हजरत से अर्ज किया। हजरत सुनकर के फरमाया, हाँ भाई बात तो तुम सही कह रहे हो, जब ऐसी जरूरत है तो वहां तो पुल बनना चाहिए ताकि लोगों को आने जाने की आसानी हो। किश्तियों में हर वक्त थोड़ी आया जाया जा सकता है जैसे तुम कह रहे हो। तो कहा हजरत फिर आलमगीर से आप सिफारिश कर दो, आप सिफारिश करेंगे तभी मिलेंगे पैसे, वैसे तो हमें मिल नहीं सकते। अब गए हजरत आगे आगे पीछे पीछे, हजरत ने जाकर के आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह से बात की कि भाई इस तरीके से फलां जगह ये बंदे आए हैं और इनको पैसों की जरूरत है, पुल बनाएंगे यहाँ पर, और वहां पे पुल की अशद जरूरत है। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह अच्छा हजरत, और उन्होंने मंजूरी दे दी कि इतने पैसे पुल बनाने के लिए दे दिए गए। अब वो पैसे लेकर गया, उन्होंने पुल उल कहाँ बनाना है, खूब ठाट से खाया पिया कौरमा बिरयानी, रात दिन मजे। अब एक साल हो गया पैसे खत्म, पैसे खत्म तो कोई, अब फिर हजरत से कहो कि अभी तो पुल बना नहीं है, पैसे और चाहिए। तो फिर गए, फिर हजरत ने थोड़े से और पैसे दिलवा दिए। अब दो तीन दफा ये हो गया, पैसे लेके जाए और हजरत की सिफारिश पर पैसे मिले और जाकर के जनाब खा पी के बराबर कर दे। तो आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह चूंकि खौफ खुदा रखने वाले बादशाह थे, तो तीसरी या चौथी मरतबा में कहा कि हजरत पैसे तो मैं दे रहा हूँ मगर मैं फला तारीख को आगे पुल देखूंगा, कितना बना, कितना बाकी है, बना नहीं बना, कैसा बना, मैं आके देखूंगा। अब जो उन्होंने ये खुशखबरी सुनी, इसे देख पुल तो बने ही नहीं, पेशाब निकल गया कि बादशाह सलामत आएंगे तो बस फिर सीधे हमें फांसी पे लटकाएंगे भाई, इसलिए कि ये तो हमने एक बड़ा धंधा बनाया था, पुल वुल कहाँ। तो अब ये बड़े परेशान, अब क्या करें, पैसे भी नहीं है, पुल तो क्या बनना, तो अब क्या करें। तो हजरत ही के पास गए, जगह हजरत बादशाह सलामत ने फरमाया कि फला करने आए हैं कि हजरत आप बादशाह सलामत से कह दीजिए पुल चोरी हो गया। तो हजरत भी ऐसे कि अच्छा भाई मैं जाता हूँ। अब बादशाह सलामत के बाद कहे कि भाई जिनके लिए आप पैसे दे रहे थे और कई मरतबा पैसे आपने मेरी सिफारिश पे दिए हैं, वो सब आए हैं मेरे पास, वो कह रहे हैं हजरत वो पुल तो चोरी हो गया, बादशाह सलामत तो क्या दिखाए। तो बादशाह सलामत को भी इतनी हंसी आई कि लोटपोट हो गया। हजरत पुल कोई सुई का नाम है या कोई चवन्नी अठन्नी का नाम है कि जो चोरी हो जाए, पुल तो पुल होता है, वो कहाँ चोरी होता है। हजरत ये कैसे हो सकता है। तो अब हजरत का जवाब सुनो, हजरत ने फरमाया भाई मुसलमान है, मुसलमान कोई झूठ बोला करते हैं क्या, मुसलमान पुल तो चोरी हो सकता है लेकिन मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। अल्लाह हाय, पुल तो चोरी हो सकता है मुमकिन है लेकिन मुसलमान हो चुके 99% झूठ बोलते, झूठ लिखते, झूठ तोलते, वजन कुछ है لکھا ہوا کچھ ہے, اندر وزن کچھ ہے. تو یہی ملازمتوں کا حال ہے کہ ملازمتوں کے اندر معاہدہ کچھ ہے, کام کچھ ہے, اس وجہ سے برکت نہیں, اس لیے خیر نہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بھئی جو بیچنے والا خریدنے والا سچ بولے گا اور اپنے سودے میں جو عیب ہے وہ کھول کر بیان کر دے گا, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال. اور جب برکت نہیں ہوگی تو کبھی بھی کاروبار میں ترقی نہیں ہوگی, کبھی بھی اس کے اندر فلاح نہیں ہوگی, اور ایسی ملازمت کے آمدنی میں کبھی خیر نہیں ہوگی, پیسے ادھر سے آئیں گے ادھر سے نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے سچ بولنے کی توفیق دے, اور اگر ہم کوئی چیز خریدیں یا بیچیں یا نوکری کریں تو اس میں پورا وقت اور پورا کام ٹھیک ٹھیک انجام دینے کی عادت ڈالیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا. www.darsquran.com